नमो अरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयुर्याणं नमो वज्जायाणं नमो लोय सव्यसाहूणं एषो पञ्च नमो यारो सव्यपावप्रणाशनो मङ्गलाणं च सव्येषिं अधमं हवै मङ्गलम् चत्तारि मङ्गलम् अर्हन्त मङ्गलम् सिद्ध मङ्गलम् साहु मङ्गलम् केवलिपण्णतो धम्मो मङ्गलम् चत्तारि लुगुत्तमा अर्हन्त लुगुत्तमा सिद्धलोगुत्तमा साहुलोगुत्तमा केवलिपण्णतो धम्मो लोगुत्तमा चत्तारि शरणं पव्रजामि अर्हन्त शरणं पव्रजामि सिद्ध शरणं पव्रजामि साहु शरणं पव्रजामि केवलिपण्णतो धम्मो शरणं पव्रजामि नमो नानस् नमो दंशनस् नमो चरितस् नमो तवस् परम पूजनीय देवाधिदेव श्री पद्म प्रभु भगवान की देवाधिदेव तीर्थंकर श्री शांतिनाथ भगवान की समयसार ग्रंथराज की आचार्य श्री गुरु विद्यासागर महाराज पद्म प्रभु भगवान का आज ज्ञान कल्याणक पंच गुरु भक्ति का उत्सर्ग करूंगा। मण्यणाइन्द सिर धरिय चत्तया
and
इच्छा वंते पंच महा गुरुभक्ति कौ सगो गौ तस्लोचे अठ महापाड़िहेर संयुक्ताणम अरहंताणम अठ गुण संपन्नाणम उद्दलोय मत्थयम पैक्याणम सिद्धाणम अठ पवयणमा संयुक्ताणम आयर्याणम आयारादि सुदनानोपदेशयाणम उपध्यायाणम चिरियन गुण पालन रयाणम शब्द साहूणम निच कालमक्षेमि पूजेमि वंदामि नमंसामि दुख खौ कम्मक खौ गोहिलाओ सुगई सुगई गमनम समाहि मरणम जिन गुण संपत्ति हो मज्जन वंदितु सव सिद्धे दुग्मचल मणोवमं गईं पत्ते वोच्छामि समय पाहुड मिणमो सुय केवली बणियं अज्ञानी के अज्ञान में भाव होते हैं और ज्ञानी के ज्ञान में भाव होते हैं। सोने से स्वर्ण के आभूषण बनते हैं और लोहे से लोहे के औजार बनते हैं। अन्नान सस उदौ जनजीवाणम अतच उपलब्धि मिच्छत्तस्सदु उदौ जीवस असद्धाणत्वम् उदौ असद्यमस्सदु जनजीवाणम हवे अविरमणम जुदुकलु सोवोगु जीवाणं सु कसा उदौ तंजान जोग उदयम जो जीवाणं तु चित्त उत्साहो सोहणम असोहणम वा कायव्वो विरति भावो वा एदेषु हेदुभूते सुखम इय वग्गणा गयं जन्तु परिणमवे अट्ठविहम नानावरणादिभावी तंखलु जीवनिबद्धं कम यवग्गणागयं जय्या तैयादु होदिहेदु जीवो परिणाम भावाणम। जन जीवाणम अतच्च उपलब्धि, जो जीवों में अतत्व की उपलब्धि होती है यानी तत्व पकड़ में नहीं आते, अतत्व ग्रहण कर लेता है। स अन्नान स उदौ, वह अज्ञान का उदय है। और जीवस असद्धाणत्तम, जीव के भीतर जो अश्रद्धान होता है जिनेन्द्र प्रणीत तत्वार्थों के प्रति जो अश्रद्धान होता है। सम्यक दर्शन की क्या परिभाषा है तत्वार्थ सूत्र में? तत्वार्थ श्रद्धानम सम्यक दर्शनम। तत्वार्थ इस शब्द का क्या अर्थ है? तत्वों का श्रद्धान, तो तत्व श्रद्धानं सम्यक दर्शनम हो जाता। एक अक्षर क्यों बढ़ा दिया? और ये नियम है सूत्रकारों में, एक पद्धति है कि अगर एक अक्षर कम हो जाए तो पुत्रोत्सव जैसा आनंद आता है। तो तत्वार्थ का अर्थ होता है तत्वेन उपलक्षिता अर्थः तत्व तस्य भावस्तत्व, यानी अपने स्वरूप से सहित जो अर्थ अर्यन्ते गम्यन्ते इति अर्थः, जो पदार्थ है स्वरूप के साथ पदार्थों का श्रद्धान तत्वार्थ श्रद्धान है। तो जीव को तो जैन लोग भी मानते हैं, इतर लोग भी मानते हैं, लेकिन चैतन्य स्वरूप के साथ जीव पदार्थ का श्रद्धान, जीव द्रव्य का श्रद्धान सम्यक दर्शन। तत्वार्थ तत्व भाव हो गया और अर्थ जो है उसका आधार हो गया, वस्तु उसको अर्थ कहा। तो स्वरूप के साथ वस्तु का श्रद्धान सम्यक दर्शन है। एकदम सरल शब्दों में इसको ऐसा बोल सकते हैं, तत्वार्थ श्रद्धानं सम्यक दर्शन। क्या अर्थ होगा इसका? स्वरूप के साथ वस्तु का श्रद्धान सम्यक दर्शन है। तो जो अश्रद्धानत्म, जो अश्रद्धान रहता है तत्वार्थों के प्रति, मिथ्यत्वस्य उदयो, उसको मिथ्यात्व का उदय जाने। तो जन जीवाणम अविरवणम हवे, जो जीवों में अविरति का भाव पाया जाता है, वो त्याग नहीं करते, सब कुछ मालूम है, जानते हैं और ये भी पता रहता है कि त्यागने योग्य है, फिर भी त्याग नहीं कर पाते, वो अविरमण है। वो क्या वस्तु है? तो आचार्य कहते हैं असंयमस्य उदयो, वो असंयम का उदय। और जीवाणम जो कलुषोगो, जीवों के अंदर जो कलुषित उपयोग होता है, यानी एक ज्ञान और दर्शन चेतना रूप जो अपना उपयोग परिणाम है, उसमें जो मलिनता आ जाती है। देखो, जानने में कोई मलिनता नहीं है, देखने में कोई मलिनता नहीं है, लेकिन जानने देखने के साथ अंदर एक मलिनता आती है। जैसे अभी सीएमसी का धुआं आ जाए यहाँ, तो आप ये सब सुन रहे हैं, देख रहे हैं, जान रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद वो जो घ्राण इंद्रिय द्वारा उसका ज्ञान पहुंचा अपने आत्मा में, अनिष्ट वस्तु का ज्ञान होने पर जो द्वेष भाव आ गया वो कलुषित है, और इष्ट वस्तु का ज्ञान होने पर जो राग भाव आ जाता है उसको भी कलुषिता कहते हैं। तो इसका नाम है कषा उदय, कषाय का उदय। कषाय का उदय किसको कहेंगे? कि जानने देखने के साथ साथ जो अंदर अपने भावों में एक मलिनता आती है, कलुषता आती है, वो कषाय भाव, अथवा राग द्वेष होता है वो कषाय भाव। और जो जीवाणु चित्त उत्साह हो, जो जीवों के पास चेष्टा करने का उत्साह पाया जाता है, मन की चेष्टा, वचन की चेष्टा और शरीर संबंधी चेष्टा करने का जो उत्साह पाया जाता है, तंजान योग उदयम, उसको योग का उदय जानो। योग मनोयोग, वचन योग और काय योग, इसके उदय में चेष्टा करने का उत्साह बनता है। और सोहणम असोहणम वा, वो शुभ और अशुभ दोनों प्रकार का हो सकते हैं, कायव्य और विरति भाव होगा, करने योग्य शुभ योग और छोड़ने योग्य अशुभ योग। लेकिन इस भाव समूह के उपस्थित होने पर, इन चार प्रकार के भावों के कारण कम्मई वगणा गयम जंतु, जो कार्मण वर्गणागत उद्गल द्रव्य है, वह नाना वर्णादि भावे ही अट्टव्यहम परिणमति, ज्ञानावरणादिक पर्याय रूप आठ कर्म की अवस्था को वो कार्मण वर्गणागत उद्गल द्रव्य धारण कर लेता है, अर्थात कार्मण वर्गणा अष्ट कर्म रूप परिवर्तित हो जाती है। इन चार भावों के होने पर, ये चार भाव जीव में हो रहे हैं और इन चार भावों के होने पर कार्मण वर्गणा कर्म बन जाती है और ज्ञानावरण आदि उसके आठ भेद हैं। और उत्तर प्रकृतियों को देखें तो 148 प्रकृतियां हो जाती है। तंखल जीव ने बद्धम, और वो जो कार्मण वर्गणागत द्रव्य है वो जीव के साथ जब जैया जीव ने बद्धम, जीव के साथ बंध जाता है, जब कार्मण वर्गणागत उद्गल द्रव्य कर्म बनकर जब जीव के साथ बंध जाता है, तैयादु होदि हेदु जीवो परिणाम भावानं, तब वह जीव अपने परिणाम रूप भावों का, अपने रागादि परिणाम रूप भावों का हेतु बन जाता है। लेकिन जीव का परिणाम उद्गल की पर्याय से बिल्कुल अलग है। उद्गल द्रव्यात् पृथक भूतैव जीवस्य परिणामः, जीवस्य दुःखं मेनय सह परिणामाहुहोन्ति रागादि एवं जीवो कम्मनि च दो विरागादि मावण्णा, एकस्य दुपरिणामो जायति जीवस्य रागमादिः ताकम्मोदय हेतु विना जीवस्य परिणामो। यदि ऐसा मान ले कि जीव और कर्म इनका संयोग उस रागादिक परिणाम को उत्पन्न करता है, अर्थात रागादिक जो परिणाम है वो जीव और पुद्गल से दोनों से मिश्रित है, ऐसा मान लिया जाए तो फिर जीव और पुद्गल इनको भी मिश्रित मानना पड़ेगा। यदि रागादिक जीव और पुद्गल के मिश्रण मान लिए जाए तो फिर जीव और पुद्गल ये दो भी अलग अलग नहीं माने जा सकेंगे, ये दो भी मिश्रित ही मानने होंगे। और यदि ऐसा मानो कि नहीं, अकेले जीव में ही रागादिक परिणाम होते हैं, फिर कर्म के उदय रूप हेतुओं के बिना भी जीव में रागादिक हो जाएंगे, यानी दोनों तरफ से आफत है। अगर ऐसा मानते हैं कि जीव का ही अकेला वो रागादिक परिणाम है तो फिर सिद्ध भगवान में नहीं होता रागादिक, ये आपत्ति आती है। और अगर ऐसा मानते हैं कि जीव और पुद्गल दोनों के मिश्रण से रागादिक परिणाम हो रहा है, यानी रागादिक जो भाव है वो कुछ जीव रूप भी है और कुछ अजीव रूप भी है, ऐसा अगर मानते हैं तो फिर जीव और पुद्गल इन दोनों को भी मिला हुआ मानना पड़ेगा, पर जीव और पुद्गल दोनों एक नहीं है। तो ऐसी दो बातें आ गई। इसके बाद कहते हैं कि जीवात् पृथक भूतैव पुद्गल द्रव्य से परिणाम है, पुद्गल द्रव्य का जो परिणमन है, पुद्गल द्रव्य की जो पर्याय है वो जीव से पृथक ही है। जय जीवेण सहज्य पुद्गल द्रव्यस्य कम्म परिणामो एवं पुद्गल जीवा हुतो विकम्मत्तमावण्णा एकस्य दुपरिणामो पुद्गल द्रव्यस्य कम्म भावेन ताजीव हे भाव हेतु हिविणा कम्मस्य परिणामो। यदि ऐसा मानोगे कि जीव और पुद्गल इन दोनों के मिलने से कर्म उत्पन्न हुआ है ज्ञानावरण आदि, तो उसमें समस्या ये आ जाएगी कि पुद्गल और जीव दोनों की मिश्रित पर्याय मानना पड़ेगा ज्ञानावरण आदि द्रव्य कर्म। पर द्रव्य कर्म जो है वो पुद्गल द्रव्य की पर्याय है, पर अगर ऐसा मानते हो कि जीव और पुद्गल दोनों ने मिलकर के उस कर्म पर्याय को रचा है, तो अगर जीव और पुद्गल दोनों ने मिलकर के रचा है तो फिर वो पर्याय भी दोनों रूप होगी, जीव और पुद्गल के मिश्रण रूप। वो पर्याय जो है ज्ञानावरण आदि कर्मों की, द्रव्य कर्म की जो पर्याय है, उसको अपन अजीव नहीं कह सकते, फिर वो जीव और अजीव दोनों का मिश्रण मानी जाएगी। और अगर एक पुद्गल द्रव्य की ही पर्याय है, पुद्गल द्रव्य अपने आप कर्म बन जाता है, तो फिर बिना जीव के परिणामों के भी कर्म बनने की स्थिति आ जाएगी, जबकि ऐसा होता नहीं है। जब तक जीव रागादिक न करे, तब तक पुद्गल द्रव्य में कर्म की पर्याय हो नहीं सकती। तथा किम आत्मनि बद्धस्पृष्टम किम अबद्धस्पृष्टम कर्म इति नये विभागेन आह। फिर क्या आत्मा में कर्म बद्धस्पृष्ट है या अबद्धस्पृष्ट है, इस बात को नयों के विभाजन द्वारा आचार्य कुनकुन स्वामी समझाते हैं। जीवे कम्मं बद्धं पुट्ठं चेदि व्यवहारणय भणिदं सुद्धणय सदु जीवे अबद्ध पुट्ठं हवै कम्मं। जीव में कर्म बंधा हुआ है, जीव में कर्म का स्पर्श हो रहा है, यह व्यवहार नय का कथन है। लेकिन सिद्ध नय का अभिमत यह है कि जीव और कर्म एक दूसरे को न तो छूते हैं न एक दूसरे से बंधते हैं, निश्चय नय का कथन है। जैसे वो कमलिनी पत्र का दृष्टांत आप स्मरण कीजिए, तो उसमें पानी तो चिपका है, वैसे दूर से देखो पानी तो उसमें लगा हुआ है, लेकिन उसके स्वभाव को देखो तो चूंकि पत्ता पानी को ग्रहण नहीं करता, इसलिए वो अबद्ध स्पृष्ट है। इसी प्रकार जीव और कर्म की स्थिति है। तथा कि इससे क्या सिद्ध हुआ, तो आचार्य कहते हैं कम्मम बद्धम अबद्धम। अब बड़े रहस्य की बात है, अब इसका सार आएगा कर्तृकर्माधिकार का। कम्मम बद्धम अबद्धम जीवे एवं तु जान नय पक्खम पक्खा तिक्कंतो पुण भण्डि जूसु समय सारो। 142वीं गाथा में आचार्य कुंदकुन स्वामी बतला रहे हैं कि समय सार क्या वस्तु है। जीव में कर्म बंधा हुआ है, जीव में कर्म नहीं बंधा, ये दोनों कथन नयों के पक्ष है। पर इन दोनों कथनों से परे जो इन दोनों पक्षों से परे है उसका नाम समय सार है। उसको समय सार कहा जाता है, जो नयों में नहीं बन सकता, जो नयों से भी ऊंचा है। अब बहुत सारे कलश काव्य दिए हैं, लेकिन आनंद आ जाएगा इतने कलशों को सुन करके। यैव मुक्त्वा नयपक्षपातं स्वरूप गुप्ता निवसन्ति नित्यं विकल्प जालचित शांत चित्ताश तएव साक्षाद अमृतं पिबन्ति। जो नयों के पक्षपात को छोड़कर निर्विकल्प समाधि की दशा में जो महामुनि अपने स्वरूप में सुरक्षित होकर सतत निवास करते हैं, वो विकल्प जाल से छूट जाते हैं, विकल्प जाल से छूट जाते हैं, शांत चित्त हो जाते हैं और लोक में समव शरण में बैठे हुए श्रोता कानों से भगवान की वाणी का अमृत पीते हैं। देवलोक में जब देवताओं को क्षुधा होती है तब उनके कंठ से अमृत झरता है, तो उस अमृत का पान वो लोग करते हैं। लेकिन ये सारे अमृत परोक्ष हैं। आचार्य अमृत चंद्र स्वामी कहते हैं कि समयसार रूप परिणत जो महामुनि है वो ही इस जगत में साक्षात अमृत का पान करते हैं। साक्षात अमृत को पीने वाले यही है जो समयसार की अवस्था में अवस्थित महामुनि है। निर्विकल्प समाधि, अभेद रत्नत्रय, सिद्धोपयोग, ये सारे उसके पर्यायवाची शब्द हैं। परम सामायिक परम समरसी भाव, ऐसे बहुत सारे शब्द हैं। तो वो अवस्था कब बनी? व्यवहार नय के पक्ष को समझ लिया, निश्चय नय के पक्ष को समझ लिया, दोनों को समझकर दोनों से ऊपर उठ गए, शांत हो गए। क्योंकि आखिर कोई भी नय क्यों ना हो, नय श्रुतक ज्ञान का अंश है और विकल्पात्मक है। एक कस्य, अब देखिए दोनों के पक्षों को बतला रहे हैं और फिर साथ में ये भी बतला रहे हैं कि इन पक्षों से परे जो समय सार है वो क्या है। 141वीं गाथा तक आचार्य कुंदकुन स्वामी ने भूमिका बनाई और अब वो साक्षात समय सार का प्ररूपण कर रहे हैं और अम्बिचंद स्वामी उसका विस्तार करते हुए कह रहे हैं, एकस्य बद्धो न तथा परस्य चिति द्वयोर्द्वा विति पक्षपातौ यस्तत्ववेदी श्रुत पक्षपातस् तस्यास्ति नित्यं खलु चिच्चिदेव। एक नहीं कहता है कि आत्मा बंधा हुआ है, दूसरा कहता है कि बंधा नहीं है। इस प्रकार चेतन स्वरूप आत्मा के विषय में दो नयों के दो पक्ष हैं। पर जो तत्ववेत्ता महामुनि निर्विकल्प समाधि में स्थित सिद्धोपयोगी श्रमण है वो इन दोनों नयों से ऊपर उठ चुके हैं, उनके लिए निश्चय से चित नित्यम चिदेव, वो आत्मा वो चेतन हमेशा चेतन रूप ही है। बंधा है खुला है ये सब विकल्प उनके अंदर नहीं है, चेतन चेतन ही है। एकस्य मूढ़ो न तथा परस्य चितिद्वयोर्द्वाविति पक्षपातो यस्तत्ववेदी चित पक्षपातस् तस्यास्ति नित्यं खलु चिच्चिदेव। ये नीचे की दो लाइनें तो सबको याद हो जाएंगी सुनते सुनते, बल्कि तीन चरण तो वैसे ही याद हो जाएंगे, सिर्फ पहले चरण में प्रत्येक छंद में अंतर है। एक नहीं कहता है कि मोह के उदय से जीव मोही है, दूसरा नहीं कहता है कि नहीं जीव त्रिकाल शुद्ध है, मोह राग द्वेष इसको छू नहीं सकते, ये साक्षात परमात्म स्वरूप है। इस प्रकार दो नयों के आत्मा के विषय में दो पक्ष हैं, किंतु जो तत्ववेत्ता महामुनि निर्विकल्प समाधि में अवस्थित है उनके लिए तो चेतन चेतन ही है, न मोही है न निर्मोही है, वो तो चेतन चेतन ही है। एकस्य रत्तो न तथा परस्य चितिद्वयोर्द्वाविति पक्षपातौ यस्तत्ववेदी चित पक्षपातस् तस्यास्ति नित्यं खलु चिच्चिदेव। तीन लाइनें आप भी बोल सकते हैं साथ में। एक में कहता है कि राग के उदय से युक्त जीव रागी है, दूसरा कहता है रागी नहीं है, क्योंकि राग जीव का नहीं है, निश्चय नहीं कहता। लेकिन जो तत्व वेत्ता है वो इन दोनों नयों के पक्षों से ऊपर उठ चुके हैं, इसलिए उनके लिए तो चेतन चेतन ही है, न रागी न वीतराग। एकस्य दुष्टो न तथा परस्य चितिद्वयोर्द्वाविति पक्षपातौ यस्तत्ववेदी चित पक्षपातस् तस्यास्ति नित्यं खलु चिच्चिदेव। एक मैं का कहना है कि द्वेष के उदय से ही संसारी जीव द्वेषी है, दूसरा कहता है कि निश्चय से राग द्वेष जीव के है ही नहीं, और जो तत्ववेत्ता है इन दोनों पक्षों से परे है वो ये जानते हैं कि चेतन चेतन ही है, न द्वेषी है न वीत द्वेषी। एकस्य कर्ता न तथा परस्य चितिद्वयोर्द्वाविति पक्षपातौ यस्तत्ववेदी चित पक्षपातस् तस्यास्ति नित्यं खलु चिच्चिदेव। एक मैं कहता है कि जीव पर का करता है। कौन सा नहीं कहते सब लोग क्यों नहीं बोल रहे? व्यवहार नहीं बोल सकता ना कि पर का करता है, और दूसरा नहीं कहता कि नहीं है। इस तरह दो नयों के दो पक्ष हैं। पर जो तत्ववेदी है, निर्विकल्प समाधि में अवस्थित है, उनके लिए तो चेतन चेतन ही है, न करता है न अकर्ता है। देखो अपन आकुलता इन्हीं में पढ़ करके उत्पन्न कर लेते हैं अपने भीतर। कभी कर्ता बन जाते हैं, कभी भोक्ता बन जाते हैं, कभी स्वामी बन जाते हैं, और कभी एक रूप हो जाते हैं। पर आकुलता हो जाती है, निकालो उसको। आत्मा से इतना प्रेम हो जाए कि बस उसका विकृत रूप बर्दाश्त न हो, निश्चय ने निषेध कर रहा ना व्यवहार का, तो वो विधि और निषेध दोनों से परे हो रहे हैं निर्विकल्प अवस्था में। नहीं नहीं, निषेध अनुभव करेंगे तो फिर वो निश्चय का अनुभव हुआ। अभी यहाँ निश्चय और व्यवहार से भी कोई तीसरी चीज है, उसमें चले गए हम। एकस्य भोक्ता न तथा परस्य चिति द्वयोर्द्वावित पक्षपातो यस्तत्ववेदी चित पक्षपातस् तस्यास्ति नित्यं खलु चिच्चिदेव। व्यवहार में कहता है कि ये पर पदार्थों को जीव भोगता है, और निश्चय कहता है कि नहीं भोगता। इसका स्पष्टीकरण आपने सुना था ना पहले, पर पदार्थों को देखो इंद्रिय सुखों को भोगते हैं कि नहीं संसारी जीव, पर इसका खुलासा क्या किया था आचार्य जयसिंह स्वामी ने कि नहीं भोगते। क्यों नहीं भोगते? क्योंकि कोई वस्तु भोगने में नहीं आती, उस वस्तु का मात्र इंद्रियों से संपर्क होता है, और इंद्रियों से संपर्क होने पर उस वस्तु के स्पर्श रस गंध वर्ण आदि का ज्ञान होता है, और उस ज्ञान के प्रति राग द्वेष जो अपने अंदर उत्पन्न होता है उसका नाम है भोग। तो किसको भोगा उसने? उस ज्ञान को भोगा रागी द्वेषी होकर। अगर ज्ञाता रहता तो फिर भोगता नहीं होता, भोगता है इसलिए शुद्ध ज्ञाता नहीं। ज्ञाता तो था पर वो अशुद्ध ज्ञाता था, कषाय के साथ उसने स्वाद लिया, लड्डू मीठा है इतना जानने में कर्मबंध नहीं है, लेकिन आ हा 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 क्या मीठा है इसमें कर्मबंध है, बहुत सरस थे। ये भोग है। अब देखिए, एक नय कह रहा है कि जीव भोगता है, दूसरा कह रहा है कि नहीं है। इस प्रकार दो नयों के एक ही जीव के विषय में दो पक्ष हैं, लेकिन जो तत्ववेत्ता निर्विकल्प समाधि में स्थित साधु है वो इन पक्षों से परे हैं, उनके लिए चेतन नियम से चेतन ही है, न भोक्ता न अभोक्ता। एकस्य जीवो न तथा परस्य चिति द्वयोर्द्वावित पक्षपातौ यस्तत्ववेदी चित पक्षपातस् तस्यास्ति नित्यं खलु चिच्चिदेव। एक में कहता है कि ये जीव है, ये चेतन जो है ना, ये जीव है, तो ये जीवति जीवित पूर्वो वा जीविष्यति इति। जीव जो जी रहा था, जी रहा है, और आगे भी जीवेगा, आगे भी जिएगा। कैसे जिएगा? दश प्राणों से सुजीव है। निश्चय ने कहता है कि नहीं, कि दश प्राण पुद्गल है, जीव तो इसके बिना ही जीव है। तो निश्चय ने कहता है कि वो जीव नहीं है, दश प्राणों वाला जीव जीव नहीं है, ये चेतन ही जीव है। इस प्रकार निश्चय ने व्यवहार का निषेध कर रहा है, व्यवहार ने कुछ और कह रहा है। दोनों नयों के अपने अपने पक्ष हैं, किसके विषय में? एक के विषय में। दोनों नए दो वस्तुओं की बात नहीं करते, एक ही वस्तु की बात करते हैं दो प्रकार से। लेकिन जो तत्ववेत्ता है इन दोनों नयों के पक्षों से छूट चुका है, वह निर्विकल्प समाधि में स्थित होकर ये जानते हैं केवल चेतन चेतन ही है, न जीव है न अजीव है। एतस्य सूक्ष्मो न तथा परस्य चित्द्वयोर्द्वावति पक्षपातौ यस्तत्त्ववेदी च्युतपक्षपातस् तस्यास्ति नित्यं खलु चिच्चिदेव। ये आप ध्यान से सुनेंगे तो हो सकता है स्वप्न में भी आपको ये पंक्तियां सुनाई दे। हमें तो कई बार ऐसा होता रहता है, स्वप्न में ये सब लाइनें चलती रहती। तो एक न कहता है कि जीव सूक्ष्म है, दूसरा कहता है कि नहीं है। यानी सूक्ष्म का अर्थ क्या हुआ, सूक्ष्म नाम कर्म के उदय से वो जीव सूक्ष्म हो गया। निश्चय ने कहता है कि है ही नहीं कर्म, तो कहाँ का सूक्ष्म और कहाँ का स्थूल, तो वो निषेध कर रहा है दोनों का। इस प्रकार दो नयों के जीव के विषय में दो पक्ष हैं, लेकिन जो तत्ववेत्ता है पक्षपातों से रहित है, दोनों नयों के पक्षों से परे है, समय सार रूप परिणत है, उनके लिए तो चेतन चेतन ही है, न सूक्ष्म है न स्थूल। एकस्य हेतुर्न तथा परस्य चितिद्वयोर्द्वाविति पक्षपातौ यस्तत्ववेदी चितपक्षपातस् तस्यास्ति नित्यं खलु चिच्चिदेव। एक में कहता है कि जीव कारण है, यानी कुमार ने घड़ा बनाया तो उसका जीव उस घड़े का निमित्त कारण है, लेकिन निश्चय कहता है कि नहीं, निमित्त कारण तो उसके योग और उपयोग की चेष्टा है, उसकी आत्मा उसमें निमित्त नहीं है घड़ा बनाने में। रोटी माँ के निमित्त से बनी नहीं, निश्चय ने कहता है कि उसके हाथ की चेष्टाओं से और उसके विचारों से रोटी बनी, उसके विचारों से उसकी चेष्टाएं प्रेरित हुई, चेष्टाओं की प्रेरणा से आटे को वैसा आकार मिला और रोटी तैयार हो गई। व्यवहार ने का ये कथन है निमित्त नैमित्तिक भाव। निश्चय ने उपादान उपादेय भाव की चर्चा करता है। वास्तव में देखा जाए तो उपादेय और नैमित्तिक क्या ये दो वस्तुएं हैं? घड़ा निमित्त नैमित्तिक भाव की दृष्टि से देखो आप तो निमित्त कौन है घड़े में? कुमार की चेष्टा। और घड़ा क्या है? निमित्त से होने वाले कार्य को नैमित्तिक कहते हैं और उपादान से होने वाले कार्य को उपादेय कहते हैं। तो व्यवहार नय से देखो तो निमित्त से होने वाला कार्य घड़ा है, निश्चय नय से देखो तो उपादान से होने वाला कार्य भी घड़ा है। अरे समझ, तो घड़ा ही व्यवहार नय से नैमित्तिक हो गया, घड़ा ही निश्चय नय से क्या हो गया? सब लोग बोलो अच्छा खुलकर, उपादेय हो गया। ये उपादेय वो वाले उपादेय के साथ मिश्रित करने योग्य नहीं है, जो हेय और उपादेय वो अलग वस्तु है। ये उपादेय उपादान के कार्य को उपादेय उपादेय कहते हैं और निमित्त से होने वाले कार्य को नैमित्तिक कहते हैं। तो एक नय कहता है कि हेतु है, दूसरा कहता है नहीं है। इस प्रकार दो नयों के दो पक्ष हैं, जो तत्ववेत्ता है पक्षपातों से रहित है वो केवल इतना ही जानता है कि चेतन चेतन है, न कारण है और न अकारण है। एकस्य कार्यं न तथा परस्य चितिद्वयोर्द्वाविति पक्षपातौ यस्तत्ववेदी चितपक्षपातस् तस्यास्ति नित्यं खलु चिच्चिदेव। एक नए का कहना है कि जीव कार्य है, जैसे अभी अपन मनुष्य है ना, तो मनुष्य होना किसका कार्य है? कर्मोदय का। कर्म का उदय कारण है और ये फल कार्य है। तो एक नए का ये कथन है, दूसरा नए कहता है कि है ही नहीं। दूसरा नए कहता है कि न संसार है न मोक्ष है, तो मनुष्य कहाँ से आ गया? कुछ नहीं, जो जीव है सो है। अब जो तत्ववेत्ता है इन दोनों नयों के पक्षों से छूट चुका है, वो केवल यही जानता है कि चेतन चेतन ही है। एकस्य भावो न तथा परस्य चितिद्वयोर्द्वाविति पक्षपातौ यस्तत्ववेदी चितपक्षपातस् तस्यास्ति नित्यं खलु चिच्चिदेव। एक नय कहता है कि जीव भाव है, भाव यानी अस्तित्व रूप है, दूसरा कहता है कि नहीं, निश्चय ने उसका निषेध करता है, जो भी व्यवहार कह रहा है निश्चय कहता है कि नहीं वैसा नहीं, नकार देता है। जो तत्ववेत्ता है इन दोनों नियमों के पक्ष से जो छूट चुका है उसके लिए चेतन नियम से चेतन रूप ही है। एक सिचाई को न तथा परस्य चिति द्वयोर्द्वावेति पक्षपातो यस तत्ववेदी च पक्षपातस् तस्यास्ति नित्यं खलु चिच्चिदेव। एक नए का कहना है कि जीव एक रूप है, दूसरे का कहना है कि नहीं, और जो तत्ववेत्ता है शुद्धोपयोग में स्थित है वो इन दोनों नयों के पक्षों से ऊपर उठ चुके हैं, इसलिए उनके लिए तो चेतन चेतन ही है, न एक रूप है न अनेक रूप है। क्योंकि देखो स्यादवाद नए की अपेक्षा से चिंतन करो तो जीव एक रूप भी सिद्ध हो जाता और अनेक रूप भी हो जाता है। एक शांतो न तथा परस्य चिति द्वयोर्द्वावेति पक्षपातौ यस तत्ववेदी चित पक्षपातस् तस्यास्ति नित्यं खलु चिच्चिदेव। एक कहता है कि जीव का अंत होता है, दूसरा कहता है कि नहीं होता, लेकिन जो तत्ववेत्ता है इन दोनों नयों के पक्षों से ऊपर उठ चुके हैं, समयसार रूप हो चुके हैं, उनके लिए तो चेतन चेतन ही है, न शांत है और न अनंत है। शांत का अर्थ होता है अंत सहित। अब इसका एक पाठ भेद शांत। एकस्य नित्यो न तथा परस्य चिति द्वयोर्द्वावेति पक्षपातौ यस तत्ववेदी चित पक्षपातस् तस्यास्ति नित्यं खलु चिच्चिदेव। एक में कहता है कि जीव नित्य है, दूसरा कहता है कि नित्य नहीं है। द्रव्यार्थिक में कहेगा ना कि जीव नित्य है, पर्यायार्थिक क्या कहेगा, अनित्य है। तो इस तरह दो नयों के एक चेतन के विषय में दो पक्ष हैं, लेकिन जो तत्व देखता है इन दोनों नयों के पक्षों से परे हो चुके हैं उनके लिए तो चेतन चेतन ही है, न नित्य है न अनित्य है। एकस्य वाच्यो न तथा परस्य चिति द्वयोर्द्वावेति पक्षपातो यस तत्ववेदी चित पक्षपातस् तस्यास्ति नित्यं खलु चिच्चिदेव। एक नए का कहना है कि जीव वाच्य है, अर्थात वचनों का विषय है, अर्थात शब्दों में जीव का वर्णन हो सकता है, दूसरा कहता है कि नहीं हो सकता। इस तरह एक चेतन के विषय में दो नयों के दो पक्ष हैं, एक कहता है वाच्य, दूसरा कहता है वचनातीत। लेकिन जो तत्ववेत्ता है इन दोनों नयों के पक्षों से परे है वो चेतन को चेतन ही समझते। एकस्य नाना न तथा परस्य चिति द्वयोर्द्वावेति पक्षपातौ यस तत्ववेदी चित पक्षपातस् तस्यास्ति नित्यं खलु चिच्चिदेव। एक नए कहता है कि जीव अनेक रूप है, दूसरा कहता है कि नहीं है, पर जो तत्ववेत्ता है शुद्धोपयोगी है उनके लिए तो चेतन चेतन ही है, न अनेक रूप है और न एक रूप है। एकस्य चेत्यो न तथा परस्य चिति द्वयोर्द्वावेति पक्षपातौ यस तत्ववेदी च्युत पक्षपातस् तस्यास्ति नित्यं खलु चिच्चिदेव। एक नए का कहना है कि जीव चेत्य है, चेतने योग्य है, अर्थात चेतना का विषय है, दूसरा कहता है कि नहीं है। इस तरह दो नयों के दो पक्ष हैं, लेकिन जो तत्ववेत्ता है इन दोनों नयों के पक्षों से ऊपर उठ चुके हैं उनके लिए चेतन चेतन ही है। एकस्य दृश्यो न तथा परस्य चिति द्वयोर्द्वावेति पक्षपातौ यस तत्ववेदी च्युत पक्षपातस् तस्यास्ति नित्यं खलु चिच्चिदेव। एक नए का कहना है कि जीव देखने योग्य है, दूसरा कहता है देखने योग्य नहीं है, पर जो तत्ववेत्ता है पक्षपातों से रहित है उनके लिए तो चेतन चेतन ही है। एकस्य वेद्यो न तथा परस्य चिति द्वयोर्द्वावेति पक्षपातौ यस तत्ववेदी च्युत पक्षपातस् तस्यास्ति नित्यं खलु चिच्चिदेव। एक नए कहता है कि जीव वेद्य है, वेदन करने योग्य है, संवेदन करने योग्य है, दूसरा कहता है कि नहीं है। इस प्रकार एक चेतन के विषय में दो नयों के दो पक्ष हैं, लेकिन जो तत्ववेत्ता इन पक्षों से रहित हो गए हैं उनके लिए तो चेतन हमेशा नियम से चेतन रूप ही है। एकस्य भातो न तथा परस्य चितिद्वयोर्वा वितिपक्षपातौ यस्तत्ववेदी चितपक्षपातस् तस्यास्तु नित्यं खलु चिच्छिदेव। एक नए का कहना है कि जीव भात अर्थात प्रकाशमान है, चावल से भी जो भात होता है वो भी उज्ज्वलता के कारण भात कहलाता है, प्रकाशमान। दूसरा कहता है कि नहीं है, पर जो तत्ववेत्ता इन पक्षों से रहित है उनके लिए तो नित्य ही चेतन चेतन रूप। स्वेच्छा समुच्छलदनल्प विकल्प जाला मेवं व्यतीत महती नय पक्ष कक्षाम अंत समरसैक रस स्वभावं स्वभावमेक मुपयात्यनुभूति मात्रम। लेकिन निर्विकल्प समाधि में क्या दशा होती है? इच्छा अनुसार उछलते हुए ढेर सारे विकल्पों के समूह से युक्त जो बड़ी भारी नयों के पक्ष की कक्षा है, सेना है, बहुत बड़ी सेना है नयों की, उसको पार करके अंदर बाहर सब तरफ एक समता रस स्वभाव का अनुभव करने वाले वे महामुनि अनुभूति मात्र उस एक चैतन्य को प्राप्त कर ही लेते हैं। देखो, अपने को अपन प्राप्त कर लें बहुत बड़ी बात है, आता ही नहीं पकड़ में। तो ये प्रक्रिया है, दोनों नयों से पहले जान लिया आत्मा को और उसके बाद दोनों नयों से परे हो गए और अपने अंदर डुबकी लगा ली, डूब गए। जो संसार में जो डूब रहे हैं अनादि से, अब वहां नहीं डूबना होगा। एक बार अगर अपनी आत्मा में डूब जाए तो फिर संसार में डूबना समाप्त हो जाए। इंद्र जालमिदमेव मुच्छलत पुष्कलोच्छल विकल्प वीचिभिः यस्य विस्फुरणमेव तत्क्षणं कृत्स्नमस्यति तदस्मि चिन्मः। उच्छलत एवं उच्छलत पुष्कलोच्छल विकल्प वीचिभिः, इस प्रकार उछलती हुई ढेर सारी चंचल विकल्पों की तरंगों के द्वारा इदम इंद्रजालम, ये इंद्रजाल, ये माया जाल, ये मोह जाल रचा हुआ है। यानी सारा संसार इन विकल्पों के जालों में ही उलझा हुआ है। आचार्य अमृतचंद स्वामी कहते हैं कि यस्य विस्फुरणमेव, जिसके प्रकाश की एक किरण ही तत्क्षणम उसी क्षण, कृत्स्नम इदम इंद्रजालम अस्यति, इस समूचे मोह जाल को माया जाल को दूर फेंक देती है, नष्ट कर डालती है। तत् चिन्मह अस्मि, वह चैतन्य प्रकाश मैं हूं। अब समझ में आया, बड़ा मैं वो बड़ा मैं हूं। बार बार छोटे मैं की तरफ क्यों जाते हो? शायद बड़े मैं से अभी ठीक से परिचय नहीं हुआ है, अथवा उससे लगाव अभी उत्पन्न नहीं हुआ है। अगर उसके प्रति लगाव हो जाए तो ये जो बार बार छोटा मैं, देखो बोलचाल में तो सब बातें होती है, सम्यक दृष्टि जीव का वो दृष्टांत याद है आपको, मुनीम वाला। मालिक के ऑफिस में मुनीम बैठा हुआ है और मुनीम की भाषा कैसी है? जैसे वही मालिक हो, लेकिन मुनीम अच्छी तरह जानता है कि मैं मालिक नहीं हूं, मैं मुनीम हूं। वो ये भी जानता है कि अगर मैं मालिक बन गया तो मुनीम भी नहीं रहूंगा। बस ये स्थिति है, सम्यक दृष्टि जीव अगर इन पर भावों का अपने आप को स्वामी समझ ले तो वो सम्यक दृष्टि ही नहीं रहेगा, मिथ्या दृष्टि बन जाएगा। तो कभी भी कैसे विचार आ रहा है अपने अंदर, आकुलता होती है, ये तो कषाय के उदय में एक औदयिक भाव है तो आकुलता तो होती है। पर उस समय अपनी अंतरात्मा से एक प्रश्न पूछना। क्या प्रश्न पूछोगे? मजेदार प्रश्न है। जो भी विचार आ रहा है मन में, उस विचार के विषय में अपनी आत्मा से आप ये पूछना कि हे आत्मन, यह विचार सम्यक दृष्टि का है या मिथ्या दृष्टि का? जब सीता जी वन में रो रही थी अकेली, तब वज्रचंद ने यही पूछा था, तुम मिथ्या दृष्टि के समान क्यों रो रही हो? मिथ्या दृष्टि के समान क्यों रो रही हो? कितना प्रभावशाली प्रश्न था, एकदम स्मरण हो आया। यो हो, कर्म और कर्म फल है, ठीक है, मैंने ही कुछ किया है उसका परिणाम है। रोने से इतिहास नहीं बदल सकता, पहले जो गलती की है आज रोने से वो गलती नहीं सुधर सकती। इसलिए गलती को गलती समझकर भविष्य में गलती न करने का संकल्प लेना ही प्रायश्चित है। तो जिसकी एक चमक मात्र उस अंधकार को नष्ट कर डालती है, वह चैतन्य तेज मैं हूं। बड़ा मैं छोटा मैं नहीं हूं। छोटा मैं तो मिथ्यात्व और कषायों के द्वारा निर्मित होता है। मैं गोरा, मैं हट्टा कट्टा, मैं दुबला पतला, मैं बहुत कम वजन वाला, मैं ओवरवेट, ये सारी बातें जो है ये छोटे मैं की बातें हैं। ये समयसार वाला मैं नहीं है। तो स्मरण करना बार बार। देखो देवलोक में कल अपन ने पढ़ा था कि नहीं, कि देव भी चौथे गुण स्थान के योग्य शुद्ध आत्मा की भावना भाते हैं, तो फिर मनुष्य क्यों नहीं भा सकते? विचार कीजिए, जब वहां चौथे गुण स्थान में चौथे गुण स्थान के योग्य भावना भा सकते हैं, तो फिर यहां मनुष्य नहीं भा सकते? अवश्य भा सकते हैं। बार बार स्मरण करो, समय सार स्वरूपो हम, मैं समय सार स्वरूप मैं हूं, मैं ये तुच्छ मैं नहीं हूं। मिथ्यात्व और कषायों से जो मैं बनता है वो मैं नहीं हूं। और उस मैं को जितने भी दुख हो रहे हैं वो केवल अपने भ्रम के कारण हो रहे हैं। यदि ये पता चल जाए कि वो मैं हूं ही नहीं, तो काय का दुख? जैसे सेठ को पता चला कि वो लड़का जो ट्रक से टकरा गया था वो मेरा लड़का था ही नहीं, तो फिर रोना धोना सब बंद हो गया, चेहरे पे मुस्कान आ गई, चलो अपना बच्चा तो सुरक्षित है। इसी प्रकार जब ये समझ में आ जाए कि मैं तो मैं हूं, तो फिर वो जो छोटे मैं को जितनी तकलीफें हो रही है वो शांत हो जाती है। इसी का नाम प्रशम भाव है, सम्यक। कषायों की उपशांतता रहती है, वो मिथ्या दृष्टि जैसा विचलित नहीं होता, आकुलित नहीं होता। अब इसके पश्चात कर्तृकर्म अधिकार की अंतिम दो गाथाएं रह जाती है, उसकी चर्चा हम फिर देखेंगे। लेकिन बार बार इसका तत्वाभ्यास आवश्यक है। तत्व ज्ञान होना अलग बात है, लेकिन तत्वाभ्यास के बिना छुटकारा नहीं। जावाणी के ज्ञान दे उसे लोकालो, सुवाणी चलावे तुम्हें, हे जिनवाणी भारती तुम्हें जनो, रुक जाइए। एक प्रयोग हम बतलाना चाहते हैं, जैसे इंदौर के जो श्रावक हैं, जब वो इस दोहे का पाठ करते हैं, जा वाणी के ज्ञानते सूझे लोकालोक, सो वाणी मस्तक चढ़ो, सदा देत हूँ, ढोक बोलते समय वो बैठ कर ढोक देते हैं, तो अपन कर सकते हैं ऐसा? किसी को तकलीफ हो तो मत करना। जावाणी के ज्ञान दे सूझे लो कालो, सुवाणी मस्तक चढ़ो सदा देत हूँ। हे जिन वाणी भारती तो ही जपो दिन रहे, जो तेरा शरणा गए सो पावे सुख जी। सदा देत हूँ ढोक के समय, ब्रह्मचारी जी ने ऐसे ढोक दी ना, तो हमें वो याद आ गई इंदौर वाली बात। हाँ क्यों नहीं, पैर दुखे तो मत होना।
नहीं हो रहा।